प्यारे मित्रों, आप अपने मित्रों को बताएं यदि वे भी ओशो के प्रवचन, ओशो की ध्यान विधियां, ओशो की किताबें, ओशो के गीत आदि सब कुछ अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर ओशो लिखकर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें 8295435000 अर्थात 8295435000। उन्हें यह भी कहें कि वे हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव अवश्य कर लें, तभी प्रवचन उनको डिलीवर हो पाएगा। धन्यवाद, प्रणाम। आइए सुनते हैं ओशो अमृतवाणी।
ओशो टॉक अथातो भक्ति जिज्ञासा नंबर 1।
ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। यह सुबह, यह वृक्षों में शांति, पक्षियों की चहचहाहट, यहां की हवाओं का वृक्षों से गुजरना, पहाड़ों का सन्नाटा, या कि नदियों का पहाड़ों से उतरना, या सागरों में लहरों की हलचल नाद, या आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, यह सभी ओंकार है। ओंकार का अर्थ है सार ध्वनि, समस्त ध्वनियों का सार। ओंकार कोई मंत्र नहीं, सभी छंदों में छिपी हुई आत्मा का नाम है। जहां भी गीत है वहां ओंकार है, जहां भी वाणी है वहां ओंकार है, जहां भी ध्वनि है वहां ओंकार है, और ये सारा जगत ध्वनियों से भरा है। इस जगत की उत्पत्ति ध्वनि में, इस जगत का जीवन ध्वनि में, और इस जगत का विसर्जन भी ध्वनि में। ओम से सब पैदा हुआ, ओम में सब जीता, ओम में सब एक दिन लीन हो जाता है। जो प्रारंभ है वही अंत है, और जो प्रारंभ है और अंत है वही मध्य भी है। मध्य अन्यथा कैसे होगा? इंजील कहती है प्रारंभ में ईश्वर था, और ईश्वर शब्द के साथ था, और ईश्वर शब्द था, और फिर उसी शब्द से सब निष्पन्न हुआ। वह ओंकार की ही चर्चा है। मैं बोलूं तो ओंकार है, तुम सुनो तो ओंकार है, हम मौन बैठे तो ओंकार है। जहां लयबद्धता है वही ओंकार है। सन्नाटे में भी स्मरण रखना, जहां कोई नाद नहीं पैदा होता वहां भी छुपा हुआ नाद है। मौन का संगीत, शून्य का संगीत। जब तुम चुप हो तब भी तो एक गीत झरझर बहता है। जब वाणी निर्मित नहीं होती तब भी तो सूक्ष्म में छंद बंधता है, अप्रगट है, अव्यक्त है, पर है तो सही। तो शून्य में भी और शब्द में भी ओंकार निमज्जित है। ओंकार ऐसा है जैसे सागर, हम ऐसे हैं जैसे सागर की मछली। इस ओंकार को समझना, इस ओंकार को ठीक से समझा नहीं गया है। लोग तो समझे कि एक मंत्र है, दोहरा लिया। ये दोहराने की बात नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर जब छंदोबद्धता पैदा हो तभी तुम समझोगे ओंकार क्या है। हिंदू होने से नहीं समझोगे, वेद पाठी होने से नहीं समझोगे, पूजा का थाल सजाकर ओंकार की रटन करने से नहीं समझोगे। जब तुम्हारे जीवन में उत्सव होगा तब समझोगे, जब तुम्हारे जीवन में गान फूटेगा तब समझोगे, जब तुम्हारे भीतर झरने बहेंगे तब समझोगे। ओम से शुरुआत अद्भुत है। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, उस ओम में सब आ गया। अब आगे विस्तार होगा, जो जानते हैं उनके लिए ओम में सब कह दिया गया, जो नहीं जानते उनके लिए बात फैला के कहनी होगी, अन्यथा शास्त्र पूरा हो गया ओंकार पर। ओंकार बनता है तीन ध्वनियों से, आ ऊ मा, ये तीन मूल ध्वनियां हैं। शेष सभी ध्वनियां इन्हीं ध्वनियों के प्रकारांतर से भेद हैं। यही असली त्रिवेणी है, आ ऊ मा, यही त्रिमूर्ति है, यही शब्द ब्रह्म के तीन चेहरे हैं। सब शास्त्र आ ऊ मा में समाहित हो गए, हिंदुओं के हों कि मुसलमानों के, कि ईसाइयों के, बौद्धों के, कि जैनों के, भेद नहीं पड़ता। जो भी कहा गया है अब तक और जो नहीं कहा गया, सब इन तीन ध्वनियों में समाहित हो गया है। ओम कहा तो सब कहा, ओम जाना तो सब जाना। इसलिए वेद घोषणा करते हैं कि जिसने ओंकार को जान लिया उसे जानने को कुछ और शेष नहीं रहा। निश्चित ही ये उस ओंकार की बात नहीं है जो तुम अपने पूजा गृह में बैठ के दोहरा लेते हो। ये ओंकार तो तुम्हारे पूरे जीवन की सुगंध की तरह प्रकट होगा तो समझोगे। तुम्हारे जीवन में बड़ी छंदहीनता है, तुम्हारा जीवन टूटा फूटा हुआ सितार है जिसके तार या तो बहुत ढीले हैं या बहुत कसे हैं, और जिस तार पर कैसे उंगलियां रखें उसका शास्त्र ही तुम भूल गए हो, और जिस सितार को कैसे बजाएं, कैसे निनादित करें उसकी भाषा ही तुम्हें नहीं आती। तुम सितार लिए बैठे हो, सितार में छिपा संगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, और जीवन बड़ी पीड़ा से भरा है। ये सारी पीड़ा रूपांतरित हो सकती है, तुम गाओ, तुम गुनगुनाओ, तुम्हारे भीतर की सरिता बहे, तुम नाचो। भक्ति जीवन का परम स्वीकार है, इसलिए सुभी है कि सांडिल अपने इस अपूर्व सूत्र ग्रंथ का उद्घाटन ओम से करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि भक्ति जीवन में संगीत पैदा करने की विधि है। जिस दिन तुम संगीतपूर्ण हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर एक भी स्वर ऐसा न रहेगा जो व्याघात उत्पन्न करता है, जिस दिन तुम बेसुरे ना रहोगे, उसी दिन प्रभु मिलन हो गया। प्रभु कहीं और थोड़ी, छंदबद्धता में, लयबद्धता में। जिस दिन नृत्य पूरा हो उठेगा, गान मुखरित होगा, तुम्हारे भीतर का छंद जिस क्षण स्वच्छंद होगा उसी क्षण परमात्मा से मिलन हो गया। इसलिए तो कहते वेद कि ओम को जिन्होंने जान लिया उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। ये शास्त्र में लिखे हुए ओम की बात नहीं है, ये जीवन में अनुभव की गए अनुभूत छंद की बात है। गायत्री तुम्हारे भीतर छिपी, भगवत गीता भी, कुरान की आयतें तुम्हारे भीतर मचल रही हैं, तड़फ रही, मुक्त करो। तुम्हारे भीतर बड़ा रुदन है, जैसे किसी वृक्ष में हो जिसके फूल नहीं खिले, जैसे किसी नदी में हो चट्टानों के कारण जो बह न सकी और सागर से मिल न सकी, जिस वृक्ष में फूल नहीं आते उसकी पीड़ा जानते हो। है और नहीं जैसा, जब तक फूल ना आए और जब तक सुगंध छिपी है जो पड़ी प्राणों में, जड़ों से जो मुक्त होना चाहती है, जो पक्षी बन के उड़ जाना चाहती आकाश में, जो पंख फैलाना चाहती है, जो चांद तारों से बात करना चाहती, बहुत दिन हो गए कारागृह में जड़ों की पड़े पड़े, जो छूट जाना चाहती है सब जंजीरों से, जब तक वह सुगंध फूलों से मुक्त न हो जाए तब तक वृक्ष तृप्त कैसे हो, तब तक कैसी तृप्ति, कैसा संतोष, कैसी शांति, कैसा आनंद। तब तक वृक्ष उदास, ऐसे ही वृक्ष तुम हो, तुम्हारे भीतर ओंकार पड़ा है बंधन में, जंजीरों में, मुक्त करो उसे। गाओ, नाचो, ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए और नाच ही रह जाए, उस क्षण पहचान होगी ओंकार से। ऐसे गाओ कि गायक ना बचे, गीत ही रह जाए, उस क्षण तुम भगवत गीता हो गए। जिस क्षण गाने वाला भीतर ना हो और गान अपनी सहज स्फुरणा से बहे, उस क्षण तुम कुरान हो गए। उस दिन तुम्हारे भीतर परम काव्य का जन्म हुआ, उस दिन जीवन साधारण ना रहा असाधारण हुआ, उस दिन जीवन में दीप्ति आई आभा उपजी। इसलिए ओम से प्रारंभ है, इस ओम में इशारा है कि तुम अभी ऐसे वृक्ष हो जिसके फूल नहीं खिले हैं, और बिना फूल खिले कोई संतुष्टि नहीं, कोई परितोष नहीं। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, और ये तुम्हें ख्याल में आ जाए कि मेरे फूल अभी खिले नहीं, कि मेरे फल अभी लगे नहीं, कि मेरा वसंत आया नहीं, कि मैं जो गीत लेकर आया था मैंने अभी गाया नहीं, कि जो नाच मेरे पैरों में पड़ा है मैंने घूंघर भी नहीं बांधे, वो नाच अभी उन्मुक्त भी नहीं हुआ। ये तुम्हें समझ में आ जाए तो अथातो भक्ति जिज्ञासा, फिर भक्ति की जिज्ञासा, उसके पहले भक्ति की कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती। भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही यह है कि मैं टूटा फूटा हूं, अभी मुझे जुड़ना है, मैं अधूरा अधूरा हूं, अभी मुझे पूरा होना है। कमियां हैं, सीमाएं हैं हजार मुझ पर, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है, बूंद हूं अभी और सागर होना है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, तभी तो तुम जिज्ञासा में लगोगे।
नोशो टॉक अथातो भक्ति जिज्ञासा नंबर 5।
ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, नाद के स्वागत के साथ संगीत के सत्कार के साथ, उत्सव की घोषणा के साथ भक्ति की जिज्ञासा पर निकलते। बजती हुई जगत की ध्वनि में, लोक और परलोक के बीच उठ रहे नाद में भगवान को खोजने निकलते हैं। यह यात्रा संगीत से पटी है, यह यात्रा रूखी सूखी नहीं है, यहां गीत के झरने बहते, क्योंकि यह यात्रा हृदय की यात्रा है। मस्तिष्क तो रूखा सूखा मरुस्थल है, हृदय हरी भरी बगिया है, यहां पक्षियों का कुंजन है, यहां जलप्रपातों का मरमर है। इसलिए ओम से यात्रा शुरू करते और ओम पर ही यात्रा पूरी होनी, क्योंकि जहां से हम आए हैं वहीं पहुंच जाना है। हमारा स्रोत ही हमारा अंतिम गंतव्य भी है। बीज की यात्रा बीज तक, वृक्ष होगा, फल लगेंगे, फिर बीज लगेंगे, स्रोत अंत में फिर आ जाता है। और जब तक स्रोत फिर ना आ जाए तब तक भटकाव है। इसलिए चाहे कहो अंतिम लक्ष्य खोजना है, चाहे कहो प्रथम स्रोत खोजना है, एक ही बात है। मूल को जिसने खोज लिया उसने अंतिम को भी खोज लिया। नाद से ही शुरू हुई है यात्रा। तुमने देखा बच्चे का जन्म होता है, नाद से यात्रा शुरू होती। बच्चे के जन्म के साथ ही चिकित्सक, नर्सें, परिवार के लोग प्रतीक्षा करते नाद की। बच्चा आवाज कर दे, चीख दे, रो दे, चिल्ला दे, जीवन का सबूत दे दे। अगर थोड़ी देर लग जाए और बच्चे के कंठ से आवाज ना निकले तो निराशा छा जाती। नाद नहीं तो जीवन का प्रारंभ नहीं। रो भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि रुदन भी नाद है। अभी गीत की तो आशा नहीं की जा सकती, रोने की ही संभावना है। अभी गीत तो सीखा नहीं, अभी जीवन के अनुभव से तो गुजरे नहीं, अभी साज तो सजाया नहीं, अभी साज तो बैठा नहीं। जैसे कि अभी पहले पहले कारीगर ने वीणा बनाई हो और इस पर हाथ तुम रखो तो ठीक ठीक सुमधुर संगीत पैदा हो जाए, यह संभव नहीं, इसकी आशा भी नहीं की जाती। लेकिन ध्वनि तो पैदा हो, विसंगीत सही, विसंगीत में संगीत छिपा है। अगर विसंगीत पैदा हो गया तो संगीत भी जम जाएगा, फिर बिठाने पड़ेंगे तार, सजाने पड़ेंगे, कसने ढीले करने पड़ेंगे, ठोंकना पीटना पड़ेगा। लेकिन कम से कम आवाज नाद तो पैदा हो जाए। अगर 3 मिनट लग जाए और बच्चे में नाद पैदा ना हो तो वो मुर्दा है। 3 मिनट के भीतर नाद पैदा ही होना चाहिए। अगर 3 मिनट तक उसने सांस नहीं ली तो फिर वो कभी सांस नहीं लेगा। रुदन से प्रारंभ है और जो ठीक ठीक पहुंच जाएंगे हंसी पर अंत होगा, वह भी नाद है। अब वीणा बैठ गई, साज जम गया। ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति है, संपूर्ण, थोड़े बहुत से नहीं चलेगा, कंजूसी से नहीं चलेगा, कृपणता काम नहीं आएगी। जरा जरा दिया और बचाए रखे तो नहीं चलेगा। परमात्मा के साथ दोस्ती उन्हीं की होती जो बेसर्त दे सकते, जो कहते यह रहा पूरा का पूरा, जो ऐसा नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दूंगा, जो इंस्टॉलमेंट में नहीं देते। खंड खंड नहीं देते, क्योंकि खंड खंड देने का अर्थ है कि भरोसा नहीं। सोचते हो थोड़ा दे के देखें, जब उतने से लाभ मिलेगा तो फिर कुछ और देंगे, उतने से लाभ मिलेगा तो फिर कुछ और देंगे। जुआरियों का काम है भक्ति, व्यवसायियों का नहीं। यह आकस्मिक नहीं है कि भारत में व्यवसायियों के वर्ग में कोई भी भक्ति का सूत्र पैदा नहीं हुआ। आकस्मिक नहीं है, इसके भीतर गणित है। व्यवसायी भक्त नहीं हो सकता, जैन है भक्त नहीं हो सकते। उनका मार्ग ज्ञान का मार्ग है, तप का मार्ग है, वह समझ में आता है, उसका गणित है। भक्ति तो बिल्कुल जुआरी का काम है, व्यवसायी का नहीं है। दांव पे लगाना है, जोखम है, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जुए का दांव है, इसमें कुछ पक्का नहीं हो सकता। तुम जुए का दांव लगा के कोई सुरक्षित नहीं रह सकते, कौन जाने क्या होगा। व्यवसायी हिसाब से चलता है, इसलिए यह आकस्मिक नहीं है कि जैनों के संप्रदाय में भक्ति की कोई अवभावना नहीं पैदा हो सकी। शुद्ध गणित का काम है, इतना दो इतना लो, इतना बुरा कर्म छोड़ दो इतना लाभ मिले, इतना अच्छा कर्म करो इतना मोक्ष पाओ, जितना करोगे उतना मिलेगा। तर्क है, सुसंगति। भक्ति तर्क नहीं है, गणित नहीं है। इसलिए भक्ति के लिए तो जुआरी का हृदय चाहिए, जो सब दांव पर लगा के खड़ा हो जाता है, इस पार या उस पार। इसलिए सांडिल्य कहते हैं, ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति है। संपूर्ण पर ध्यान रखना, उसमें चित्त का लग जाना अमृत की उपलब्धि है, कुछ और नहीं करना है। उसमें चित्त का लग जाना, और चित्त तब तक नहीं लगेगा जब तक तुम कुछ भी बचाओगे, तब तक चित्त संकित रहेगा, तब तक चित्त सोचता रहेगा, विचारता रहेगा, जांचता रहेगा, आंख के कोने से हिसाब रखता रहेगा, पुण्य पाप की राशि लगाता रहेगा। संपूर्ण तुम रख दो दांव पर, और कृपणता का कारण क्या है, है क्या तुम्हारे पास रखने को, वही खाली अहंकार है। खाली पात्र अहंकार का है, जो कभी भरा नहीं, भर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तलहटी नहीं है। तुम भरते जाते हो, सब गिरता जाता है। खाली का खाली रहता है, खाली होना उसका स्वभाव है। इस खाली घड़े को ही परमात्मा के चरणों में रखना है, इसमें भी कंजूसी कर जाते हो, इसमें भी कहते हो थोड़ा थोड़ा। सांडिल कहते हैं, उसमें चित्त का संपूर्ण रूप से लग जाना ही अमृत की उपलब्धि है। क्यों? अमृत कुछ अलग नहीं है। जिस दिन तुमने जाना कि मैं नहीं हूं, तुम अमृत हो गए। अमृत का अर्थ है अब तुम कभी ना मरोगे। मैं मरता है, मैं मरा ही हुआ है, तुम तो शाश्वत हो। यह मैं के साथ तुम्हारा जो गठबंधन हो गया है, इसकी वजह से तुम क्षणभंगुर से बंध गए हो। जैसे किसी आदमी ने मान लिया कि मैं मेरे कपड़े हूं, अब वो कपड़े नहीं उतारता, क्योंकि वो डरता है कपड़े उतर गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
एनोशो टॉक अथातो भक्ति जिज्ञासा नंबर 21।
अथा तो भक्ति जिज्ञासा। अब भक्ति की जिज्ञासा, भक्ति की क्यों, भगवान की क्यों नहीं? साधारणता लोग भगवान की खोज में निकलते हैं, और चूंकि भगवान की खोज में निकलते हैं इसलिए ही भगवान को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते। भगवान की खोज ऐसी ही है जैसा अंधा आदमी प्रकाश की खोज में निकले। अंधे को आंख खोजनी चाहिए, प्रकाश नहीं। आंख का उपचार खोजना चाहिए, प्रकाश नहीं। प्रकाश तो है, उसकी खोज की जरूरत भी नहीं है। आंख नहीं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान की खोज में निकला वह भटका, जो व्यक्ति भक्ति की खोज में निकलता है वह पहुंचता है। भक्ति यानी आंख, भक्ति यानी कुछ अपने भीतर रूपांतरित करना है। भक्ति का अर्थ हुआ एक क्रांति से गुजरना है, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। साधारणता कोई विचार करेगा तो लगेगा सूत्र शुरू होना चाहिए था अब भगवान की जिज्ञासा, लेकिन सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। सूत्र भगवान की बात ही नहीं उठाता, भगवान से तुम्हारा संबंध ही कैसे होगा। भगवान से संबंधित होने वाला हृदय अभी नहीं, अभी वह तरंग नहीं उठती भीतर जो जोड़ दे तुम्हें। अभी आंखें अंधी, अभी कान बहरे, इसलिए भगवान को छोड़ो, उस चिंता में ना पड़ो, भक्ति को जगा लो। इधर भक्ति जगी उधर भगवान मिला, इधर आंख खुली उधर सूरज के दर्शन हुए, इधर कानों का बहरापन मिटा कि नाद ही नाद है, ओंकार ही ओंकार छाया हुआ है, सारा जगत अनाहद की ही अभिव्यक्ति है। इधर हृदय में तरंगें उठी कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह दिखाई पड़ा। एक तो बुद्धि है जो विचार करती, और एक हृदय है जो अनुभव करता है। हमारे अनुभव की ग्रंथि बंद रह गई, खुली नहीं, गांठ बनी रह गई। हमारे अनुभव करने की क्षमता फूल नहीं बनी, इसलिए प्रश्न उठता है भगवान है या नहीं। लेकिन प्रश्न अगर जरा ही गलत हुआ तो उत्तर कभी सही नहीं हो पाएगा। भक्ति की जिज्ञासा करो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं भगवान कहां है। मैं उनसे पूछता हूं भक्ति कहां है। भक्ति पहले होनी चाहिए, लेकिन उनके प्रश्न की भी बात विचारनी है। वे कहते हैं जब तक हमें भगवान का पता ना हो तब तक भक्ति कैसे हो, किसकी भक्ति करें, कैसे करें, कहां जाएं, किसके चरणों में झुकें। भगवान का भरोसा तो पहले होना चाहिए, तभी तो हम झुक सकेंगे। चूंकि भगवान की खोज की उन्होंने गलत जिज्ञासा उठा ली है, अब इस गलत जिज्ञासा के कारण बहुत से गलत समाधान उठते रहेंगे। भक्ति के लिए भगवान की कोई जरूरत ही नहीं, आंख के उपचार के लिए सूरज की क्या जरूरत है। भक्ति के लिए सिर्फ तुम्हारे प्रेम के भाव के बढ़ने की जरूरत है, भगवान की कोई जरूरत नहीं। प्रेम को इतना बढ़ाओ कि अहंकार उसमें डूब जाए, लीन हो जाए। जहां प्रेम निरअहंकार को उपलब्ध हो जाता है वहीं भक्ति बन जाता है। भक्ति का भगवान से कुछ भी संबंध नहीं, भक्ति तो प्रेम का ऊर्ध्वगमन है। प्रेम को मुक्त करो क्षुद्र से, प्रेम को बड़ा करो, प्रेम की बूंद को सागर बनाओ। जिससे भी प्रेम करते हो गहनता से करो, जहां भी प्रेम हो वहीं अपने को पूरा उंडेल दो, कंजूसी ना करो। अगर प्रेम कृपण हो तो काम हो जाता है, और प्रेम अगर अकृपण हो तो भक्ति हो जाता है। प्रेम अगर मांगता हो तो वासना हो जाता है, प्रेम अगर देना ही जानता हो तो भक्ति हो जाता है। लुटाओ प्रेम, उसी लुटने में तुम भक्त हो जाओगे, और जहां तुम भक्त हुए वहीं भगवान का दर्शन है। तुमसे कहा गया है बार बार कि भगवान पर भरोसा करो ताकि भक्ति हो सके। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भक्ति को जगाओ ताकि भगवान पर भरोसा हो सके। और सांडिल्य के सूत्र मेरे पक्ष में खड़े। सांडिल्य कहते हैं अथातो भक्ति जिज्ञासा। अब भक्ति की जिज्ञासा करें। और जिसने भक्ति की जिज्ञासा नहीं की वो आया तो संसार में, आ नहीं पाया, जिया और जी नहीं पाया, हुआ और हो नहीं पाया। उसकी कथा दुर्दिनों की कथा है और दुर्घटनाओं की। अवसर मिले लेकिन कोई भी अवसर फला नहीं। जो भक्ति के बिना जी लिया, जो भगवान को बिना जाने जी लिया, उसके जीवन को क्या खाक जीवन कहें। श्री अरविंद ने कहा है, जब मैं जागा तब मैंने जाना कि जीवन क्या है। उसके पहले तो जो जाना था वो मृत्यु ही थी, उसे भ्रांति से जीवन समझ बैठा था। जब आंख खुली तब पहचाना रोशनी क्या है। उसके पहले जिसे रोशनी समझी थी वह तो अंधेरा निकला। जब हृदय खुला तो अमृत की पहचान हुई। उसके पहले तो मृत्यु को ही अमृत समझ बैठे थे। अंधा आदमी पत्थर को हीरा समझ ले आश्चर्य क्या। अंधे को परख भी कैसे हो पत्थर की और हीरे की। अंधे को दोनों पत्थर है, आंख फर्क लाती, आंख में जौहरी छिपा है। तो ख्याल रखना, अगर भक्ति की जिज्ञासा नहीं उठी है तो समझना कि अभी तुम जन्मे ही नहीं, अभी तुम गर्भ में ही पड़े हो, अभी तुम बीज ही हो, अभी अंकुरण नहीं हुआ। अभी जीवन की जो परम संपदा है उसकी भनक भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। दिल में सोजे गम की एक दुनिया लिए जाता हूं मैं, आह तेरे मैकदे से बेपिए जाता हूं मैं। जो बिना भक्ति के चला गया वो इस मधुशाला में आया और बिना पिए चला गया। आह तेरे मैकदे से बेपिए जाता हूं मैं। इस जगत को पीने की कला है भक्ति। और जगत को जब तुम पीते हो तो कंठ में जो स्वाद आता है उसी का नाम भगवान है। इस जगत को पचा लेने की कला है भक्ति। और जब जगत पच जाता है तुम्हारे भीतर और उस पचे हुए जगत से रस का आविर्भाव होता है, रसो वैसा, उस रस को जगा लेने की कीमिया है भक्ति। सांडिल ने ठीक ही किया जो भगवान की जिज्ञासा से शुरू नहीं की बात। भगवान की जिज्ञासा दार्शनिक करते, दार्शनिक कभी भगवान तक पहुंचते नहीं। विचार करते भगवान का जैसे अंधा विचार करे प्रकाश का, बस ऐसे ही उसके उनके विचार हैं। अंधे की कल्पनाएं अनुमान, उन अनुमानों में कोई भी निष्कर्ष कभी नहीं। निष्कर्ष तो अनुभव से आता है। सांडिल्य के सूत्र दर्शन शास्त्र के सूत्र नहीं, प्रेम शास्त्र के सूत्र है। इसलिए पहले शब्द में ही, पहले सूत्र में ही सांडिल्य ने अपनी यात्रा का सारा संकेत दे दिया। मैं किस तरफ जा रहा हूं,